ओम शांति। आज हमारे बीच में डॉक्टर ब्रिजेश है ग्वालियर से, डॉक्टर ब्रिजेश सिंगल। कल ही ये मॉर्निंग में हॉस्पिटल पहुंचे और कल इन्होंने दो मेजर सर्जरीज की, शाम को ही ये फ्री हुए। और आज का इनका टॉपिक है स्पिरिचुअल स्नेक्स एंड लैडर, आध्यात्मिक सांप सीढ़ी। तो ये हमारे बीच में कोई बड़ा सा ये चार्ट भी लेके आए हैं जिस पे पूरी स्नेक्स एंड लैडर बनाई है इन्होंने खुद से, तो इस पर आज बात करेंगे।
ओम शांति। जैसे कि आपको बताया, आज का टॉपिक है रूहानी सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी के खेल से सभी परिचित होंगे, ये जो बहुत सारे गेम्स में से वो एक रेयर गेम्स में से है जिनका ओरिजिन इंडिया में हुआ है। प्राचीन भारत में ये गेम स्टार्ट हुआ था। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इस गेम के बारे में है कि हमने इसको नाम दिया रूहानी सांप सीढ़ी। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड देखें तो ये गेम, इसका जो आधार है जिस बेसिस पर ये गेम बना है, वो आध्यात्मिक जगत ही है। आध्यात्मिक जगत में रूहानी यात्रा पर जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको लेकर ही इस गेम को बनाया गया था। इसके बहुत सारे नाम भी हैं। एक नाम है बैकुंठ पल्ली, एक और साउथ में बोलते हैं परमपद सोपनम, यानी मोक्ष की सीढ़ी। तो उन्होंने जब ये गेम बनाया था तो जो पर्पस था इस गेम का, तो मेन पर्पस वाज केवल खेल तो हुई, एंटरटेनमेंट तो हुई, बट इसके साथ में इट वाज मेन पर्पस वाज टू टीच मोरालिटी टू पीपल, लोगों को मोरालिटी का ज्ञान देना। गेम को जब इसका जो सेंट्रल कंसेप्ट जो इस गेम का था वो था लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पैशंस, ये हमारे जितने भी विकार हैं उनसे छुटकारा पाना, विकारों से छुटकारा पाएं, सही राह पर चलें, तो इस राह में हमारी कंटिन्यूस प्रगति होती जाती है और हम जीरो से लेकर फिनिश तक पहुंचते हैं। मतलब जो आत्मा है वो लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की हाइट तक पहुंचती है, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको नाम दिया मोक्ष। लेकिन जैसा कि बाबा ने हमें बताया कि मोक्ष तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमने उसको दिया नाम जीवन मुक्ति, नहीं अटेनमेंट जो हम पहुंचते हैं, हमारा अल्टीमेट एम जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति, उसमें मुक्ति तो मिल ही जाती, जीवन मुक्ति हमारा एम है। जैसा कि देखेंगे इस गेम में बॉक्सेस बने हुए हैं, हर बॉक्स जो है वो लाइफ की एक स्टेज को दर्शाता है। आध्यात्मिक यात्रा मतलब रूहानी यात्रा में हमारी जिस बात है स्थिति, तो हर बॉक्स एक स्थिति को दर्शाता है और हर बॉक्स पर या तो कोई वर्च्यू है या फिर वाइसेस है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उन वर्च्यूज को यूज कर रहा हूं या मैं उन वाइसेस का शिकार हो रहा हूं, और जैसा मेरी जिंदगी में चलता जाता है उसके हिसाब से मैं इस राहों पर चढ़ना है या गिरना है वो डिपेंड करता है। जैसे वो बाबा का एक बात है ना जो हमेशा याद आता है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। एक्चुअली वो इस रूहानी यात्रा में वही है। अगर चढ़ेंगे हम, इफ वी आर डूइंग गुड थिंग्स, हमेशा श्रीमत का पालन कर रहे हैं, सब मर्यादाओं पर चल रहे हैं, तो हमारे को बाबा की सीढ़ी मिलती है चढ़ने के लिए। तो बाबा बोलते हैं जंप मारो, या बाबा कहते हैं लिफ्ट लो। तो इसमें गेम में सीढ़ियां दिखाई हुई हैं, और अगर हम इन सबको भूलकर किसी विकार के वश होते हैं या कोई भी बायसेस हमारे को जाने या अनजाने कैसे भी, कोई सांप जो इसमें दिखाए ना सांप, वो एक्चुअली सांप माया को डिनोट करते हैं। जो सीढ़ी है लैडर वो हमारे को बाबा का हाथ और साथ है। बाबा बोलते हैं ना बाबा का हाथ पकड़ के चलना है, ऊपर चलना है। तो जब हम बाबा का हाथ या साथ पकड़ते हैं और चीजों का सहारा लेते हैं तो हम ऊपर चढ़ते हैं, और जब वाइसेस जो कि सांप के रूप में उनका हम शिकार होते हैं तो हमारी स्थिति नीचे आती है। एक गाना भी हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो हमारी रूहानी यात्रा है वो जीरो से हीरो बनने की है। स्टार्ट जो करते हैं वो जीरो और लास्ट में पहुंचते हैं तो हीरो।
हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं योद्धे औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में, जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में, जगना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है, हमें उन राहों पर चलना है।
तो जैसा कि गीत में सुना, इस गेम में है ना, दुनिया के लिए भले ही एक गेम है लेकिन हमारे लिए एक बहुत सीरियस बिजनेस है। वी कांट जस्ट टेक इट एज गेम, इन राहों पर चलना है और समझ। जब आध्यात्मिक यात्रा हम शुरू करते हैं अपने जीवन की, तो हमारे को चार सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अच्छा, एक चीज और है, इस गेम को खेला जाता है पासे के साथ, तो कोई बता सकता है पासा क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें? हम इसमें पासा डालते हैं, नंबर आते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें हैं, फेट, कर्म एंड डेस्टिनी। तो पासा क्या रिप्रेजेंट करता है? पासा हमारा फेट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है, वो हमारा कर्म, जिससे कि हम फेट को, क्योंकि अगर हम सिर्फ पासे के सारे इस गेम को खेलेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। जो पासा देगा हम सिर्फ उसके हिसाब से या तो चढ़ेंगे या उतरेंगे, लेकिन हम अपने कर्मा को जब इसमें ऐड करते हैं तो हमारा फेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो जर्नी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की। चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो देखा होगा कि जो तीन सब्जेक्ट हैं पहले, ज्ञान, योग और धारणा, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं बड़े इंडिविजुअल कंसेप्ट पर हैं। ज्ञान में आप जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, माया बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती इसमें। बाबा कहते हैं योग में माया इंटरफेयर करती है, लेकिन योग में भी माया के घुसने के जो गेट है ना, बड़े कम है। धारणा भी इंडिविजुअल कंसेप्ट है, आप जितना चाहो धारणा करो, कोई दूसरा आपको उसमें ना तो रोक सकता है ना आपको एक्स्ट्रा कुछ वो कर सकता है, सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। लेकिन एक सब्जेक्ट है सेवा, जहां पर कि सारे कंपटीशन है, माया चारों तरफ से जिसमें कि आपको पकड़ती है, क्योंकि वो हमें जाके सेवा करनी कहां है, माया के ही राज्य में जाके सेवा करनी है। तो माया के सारे गेट जो है वो सेवा के रास्ते खुले हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो सांप है इसके वो भी उसी रास्ते में आते हैं। कुछ सांप हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी भूलते नहीं है, जो बड़े बड़े विकार हैं, सूक्ष्म विकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सांप हैं जो बहुत छुपे रुस्तम टाइप के ना, वो जब काटते भी हैं तो पता नहीं चलता है कि कब उन्होंने काट लिया और हमारी स्थिति जो है ऊपर से बहुत नीचे आ जाती है। तो जो जर्नी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की, इसमें हमने सेवा को ही मेनली इसको आधार बनाया है। सेवा सबसे पहले किसकी? स्वयं की। तो स्वयं की सेवा करके स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन किया, फिर हमारे परिवर्तन इतना अच्छा हुआ कि उसको देखकर विश्व की अन्य आत्माओं ने परिवर्तन चालू किया और विश्व परिवर्तन हो गया। एंड अल्टीमेटली जो हमारा एम है पूरा विश्व परिवर्तन, वो इससे हो जाता है। तो बाबा बैठकर ये गेम देख रहे हैं ऊपर से कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्योंकि गेम तो स्टार्ट हो चुका है, गेम 80 साल से चल रहा है। कुछ आत्माएं गेम को पूरा भी कर चुकी हैं, है ना, बाप के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ कुछ आत्माएं इस गेम को पूरा भी कर चुकी हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं प्रत्यक्षता का पर्दा भी खुल गया है, थोड़ा थोड़ा खुल गया है, क्योंकि उन आत्माओं की तपस्या का प्रभाव है। सारी दुनिया झांक झांक कर देख रही है कि कौन सा गेम चल रहा है, क्या चल रहा है। पहले तो डरते थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अब सब में उत्सुकता है कि ऐसा कौन सा गेम है, हम भी इसको खेलें, हम भी इनके बारे में जानें। तो बाबा कह रहे थे गेम है, हम इन गेम में खेल रहे हैं, इसमें गाइड मेरा बाबा है, लक्ष्य सब आत्माओं का एक ही है, कैसे भी करके 108 स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। तो बाबा देखकर, जैसे बाबा जब मुरली स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं ना, बाबा ने देखा, तो बाबा ने देखा कि सभी बच्चे एक ही कार्य के निमित्त हैं, सबका लक्ष्य भी एक ही है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सबका गाइड भी एक ही है, सबकी पालना भी एक ही है। बाबा ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को बहुत सपोर्ट करता है, दूसरे को नहीं करता है, या किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसको हटा देता है। बाबा सबके साथ एक सा व्यवहार है, तो हमारा गाइड एक है, लक्ष्य एक है, सब कुछ एक है, फिर भी नंबर वार है, कोई पहली लाइन में अटका है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चौथी में, कोई पांचवी में। कुछ बहुत विशेष आत्माएं हैं जो कि इस गेम को पूरा पार भी कर चुकी है, जीत कर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच के एडवांस पार्टी में, उन्हीं का प्रभाव है जो कि अन्य आत्माएं विश्व की इस तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो कुछ बच्चों ने इस जर्नी में बहुत ही सहज और शीघ्र परिवर्तन कर लिया, फटाफट चले बाबा सीढ़ियां ली, सांपों से अपने आप को बचाया, बहुत जल्दी 108 वाली जो स्टेज है उसको पार कर करके आगे पहुंच गए। लेकिन कुछ बच्चे जो अटके हुए हैं, बार बार चढ़ते हैं, चढ़कर पहुंचते भी हैं, पता चला 7th-8th लाइन तक पहुंचे, लेकिन फिर कोई सांप आया, उसने डसा और वापस आ गए। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसे कौन कौन से सांप हैं, सांप यानी कि माया, जिसे माया बोलते हैं, कौन कौन से सांप हैं जो हमारे को इस गेम में बार बार हमारी स्थिति को सतत ऊपर नहीं जाने देते, बार बार हम नीचे ले आते हैं, कौन कौन से सांप हैं? ईर्ष्या, उनको विकार हम एक तरह से कह सकते हैं, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप किसे कहेंगे? हाँ, तो नंबर वन है स्वयं के संस्कार, सबसे बड़ा जो विघ्न है वो हमारे स्वयं के संस्कार, जिनका कि अभी तक परिवर्तन नहीं हो पाया। आए तो हमने बड़े आराम से उनको दवा तो दिया, लेकिन उनको पूरी तरह हम पीछे तरह धकेल नहीं पाए, बीच बीच में वो सर उठा लेते हैं। एक तो स्वयं के संस्कार और देह अभिमान, भाई स्वयं के संस्कार में आ गया एक प्रोसेप्ट। दूसरा है माया के द्वारा आने वाले पेपर्स, तीसरा है प्रकृति के द्वारा आने वाले पेपर्स, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतु होने वाले हिसाब किताब। अभी रिसेंट एक मुरली में बाबा ने बताया ना कि ब्राह्मण आत्माएं भी सबसे ज्यादा पेपर आपके लेंगी, क्योंकि वो जो हिसाब किताब है वो चुकतू करने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, वो सब यहीं आएंगे। कुछ बच्चे जो है वो परिवर्तन करने की हिम्मत में ही बहुत कमजोर है, तो उन्होंने इनिशियली चल तो लिए, लेकिन परिवर्तन की जो हिम्मत चाहिए थी जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता, बाप पसंद या दिल पसंद जो रिजल्ट निकलता वो नहीं निकला, तो हिम्मत नहीं तो उमंग उत्साह नहीं आया, और उमंग और उत्साह नहीं आया तो जो स्वयं परिवर्तन के कार्य में जो सेवा होनी चाहिए थी, जिसको दिल पसंद सेवा बाप की कहते हैं, वो सेवा नहीं हुई। सेवा तो हुई छोटी मोटी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकला जो चाहिए था, क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो अलौकिक रूहानी सेवा जिस पर हम निकले हैं, ये एक ही समय में तीन प्रकार की सेवा की सिद्धि है। पहली जो सेवा है वो वृत्ति द्वारा, है ना, जितनी पावरफुल वृत्ति होगी उतना पावरफुल वायुमंडल बनेगा। दूसरी सेवा है वाइब्रेशंस की, जितने अच्छे वाइब्रेशंस होंगे उतना जल्दी आत्मा को टच करेंगे। और तीसरी है वाणी द्वारा, जो कि काफी विस्तार में है सेवा। लेकिन बाबा कहते हैं एक साथ जब तीनों तरह की सेवा करते हैं तभी जाकर के दिल पसंद रिजल्ट निकलता है, जिस पर कि बाबा कहते हैं हाँ बच्चे को तुमने सेवा की। उन तीनों सेवाओं का जो आधार बाबा ने बताया उसमें एक शक्तिशाली निमित्त जो कि आप खुद हैं आत्मा, शक्तिशाली निमित्त के साथ एक निर्माणता का भाव चाहिए, और तीसरा जो सेवा होनी चाहिए वो निस्वार्थ होना चाहिए। जब इस रीति हम सेवा करते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो बहुत दृढ़ निश्चय वाला परिवर्तन होता है, वो फिर वापस रिवर्ट नहीं होता है बार बार। अदरवाइज हम सेवा तो करते हैं लेकिन जो फल निकलता है ना वो थोड़े टाइम के लिए हम भी खुश हो जाते हैं, हमारे साथ वाले भी खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा भी उसमें शाबाश शाबाश बोल देते हैं, क्योंकि बाबा की जो दृष्टि वृत्ति है वो रहम की है। लेकिन चूंकि बाबा हमारा शिक्षक भी है तो बाबा हमें अटेंशन जरूर दिलाते रहते हैं कि बच्चे अभी ये वो सेवा नहीं है जो बाप के दिल पर छप जाए या बाप के दिल पर जो अकाउंट में लिख जाए। तो बाबा ने देखा कि कुछ आत्माएं कहीं है, कुछ आत्माएं कहीं है, जो दिल पसंद, लोक पसंद और परिवार पसंद और बाप पसंद जो सेवा थी वो नहीं हो रही है। तो सेवा का आधार चूंकि हमने बताया कि स्वयं परिवर्तन है, तो स्वयं परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरा सेवा जो हमारी करनी है इस राह में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वयं परिवर्तन के लिए हम चलते हैं, एक सीढ़ी पकड़ी थोड़ा ऊपर चढ़े लेकिन फिर आगे जाके कहीं ना कहीं कोई सांप ने हमको डसा और हम आगे वापस। एक बार एक सांप ने डसा तो कायदे से ये होना चाहिए जब एक बार सांप ने डस लिया तो मेरा परिवर्तन फिर ऐसा होना चाहिए कि दोबारा वो सांप ना डसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार एक ही सांप बार बार डसता है और हमारी स्थिति को बहुत नीचे ले आता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति की कमी है, कौन सी शक्ति हमें चाहिए जिससे कि जो हमारा परिवर्तन है वो एकदम से दृढ़ परिवर्तन हो जाए, दोबारा से फिर वो संस्कार जागे ही नहीं।
आपका पूरा नॉलेज,
परखने की शक्ति, अष्ट शक्तियां तो बाबा ने बताई है, इनके अलावा भी कोई विशेष शक्ति है? महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। स्वयं परिवर्तन के लिए एक ही शक्ति चाहिए, पावर ऑफ रियलाइजेशन। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं होगी तब तक हमारे को अनुभूति नहीं होगी, और जब तक अनुभूति नहीं होगी अनुभवी नहीं बनेंगे, और बिना अनुभवी बने माया बार 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 हमको डसेगी। बाबा ने बताया ना कि जो अनुभवी आत्माएं हैं उनके आगे माया कभी बार नहीं कर सकती, उनके आगे माया हमेशा आएगी तो या तो अदब से नमस्कार करने आएगी, विदा लेने आएगी या छुट्टी लेने आती है बस, पर कभी उनके विघ्न नहीं बन सकती माया। तो अनुभवी बनने के लिए अनुभूति जरूरी है, और अनुभूति के लिए रियलाइजेशन पावर यानी महसूसता की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पूरा इसी पर बात करेंगे, महसूसता की शक्ति। उसके लिए हम जैसे आदिकाल से अपने जीवन को देखें, जब से हमने इस ब्राह्मण लाइफ में आए तो आदिकाल में हमने सबसे पहला परिवर्तन क्या किया, जब बिल्कुल ब्राह्मण बने सबसे नए, पहला चैप्टर मैं आत्मा हूं, है ना, शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, बाप कौन है, बाप से मेरा क्या संबंध है। ऐसा नहीं है कि जब ब्राह्मण बने तभी ये समझ, उससे पहले भी हमने आत्मा तो कई बार सुना था, पिक्चर में देखा, पंडित ने बोला, जाने कहां हमने आत्मा सुना, लेकिन क्या किया हमने, सुना और निकाल दिया, उसको महसूस नहीं किया कभी कि हम आत्मा है। और यहां पर आने के बाद क्या हुआ, सबसे पहली महसूसता जो हमने की, महसूस करने की जो शक्ति यूज की कि मैं आत्मा हूं, और जैसे ही ये जाना कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को आत्मा महसूस किया, वैसे ही परमात्मा को जानना मेरे लिए आसान हो गया। वरना ऐसा कौन है दुनिया में जो पैदा होने से लेकर मरने तक परमात्मा को, परमात्मा की बातें नहीं सुनता, सब सुनते हैं लेकिन कोई जान नहीं पाते क्योंकि उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको जानते नहीं, उसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यहां आकर जैसे ही मैंने ये महसूस किया पहली चीज कि मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, वो मेरा बाप है, और उसको याद करना ही योग है। जैसे ही इन चीजों की महसूसता हुई मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। वरना देखो कितने लोग आते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है 200 400 500 लोग कोर्स करने आते हैं, टिकते कितने? टिक वही पाता है जो उस चीज को महसूस कर पाता है, क्योंकि सुनाया सबको वही ज्ञान है, आए भी बहुत लोग, कोर्स भी सबको कराया, लेकिन टिका कौन? जिसने इस चीज को महसूस कर लिया। तो महसूसता की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना डीप रियलाइजेशन हम करेंगे उतना हमारा जो ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन है वो मजबूत होगा। जितना मजबूत फाउंडेशन होगा उसके ऊपर इमारत उतनी बुलंद बनेगी। फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है, सिर्फ सुन लिया कि हाँ आत्मा परमात्मा ये वो, आए तो उसके ऊपर महल बनाया, रेत का महल, दो दिन में ढह गया, चार दिन बाद आना बंद हो जाता है, जो कि अक्सर कर प्रोग्राम्स के बाद हमने देखा। तो महसूसता की शक्ति में सबसे पहला परिवर्तन हमारे जीवन में था, मैं आत्मा हूं। जब तक महसूस नहीं किया हमारी जो स्पीड थी चलने की बहुत धीरे 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 एक एक करके हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे महसूसता बढ़ती गई हमें समझ आने लगा कि बाबा का हाथ और साथ क्या है। तो बाबा का हाथ पकड़ा, सीढ़ी चकड़ी, सीढ़ी पकड़ी और फटाफट हमने जंप मारी, 7 से लेके 27 पहुंचे, 47 से लेके 70 पहुंचे, फटाफट करके हम पहुंच सकते थे। कुछ आत्माएं बड़ी विशेष आत्माएं थी जिन्होंने देखा, फटाफट सीढ़ी पकड़ी और बहुत जल्दी उस सीढ़ी को पार कर गए। तो बाबा कहते हैं आत्मा महसूस कर लिया, अब अपने आप को बहुत सारी महसूसताएं करनी है इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस समय की महसूसता करनी है कि ये जो समय है वो संगम युग का वही समय है जिस पर कि मैं कल्प कल्प चल करके इस पूरे गेम को मैंने पार किया है। उमंग उत्साह भी वही है ना, बाप भी वही है, बाप को भी महसूस करना है, बाप के साथ मेरा जो योग है पुराना वो भी वही है। तो जब हम ये सब महसूसताएं करते हैं तो हमारा जो पुरुषार्थ है बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, फिर हमें इन सांपों से बचना आ जाता है। क्योंकि सांप ने भी एक बार डसा तो हमारे को उसको महसूस करना है कि मेरी कौन सी गलती, मेरा कौन सा मेरा संस्कार था जिसकी वजह से मैं मेरी स्थिति नीचे आई। तो सारा सारा दारोमदार महसूसता की शक्ति पर टिका हुआ है। तो स्व परिवर्तन के लिए कौन सी महसूसता चाहिए, क्योंकि गेम पूरा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का है। तो कौन सी महसूसता की शक्ति में क्या यूज करना, में कौन सी बातों की महसूसता करनी है जिससे कि हम इन सांपों से बच जाए? एक तो स्वयं के गुणों की महसूसता, समय की महसूसता, कल पहले, ये सब अच्छे चढ़ने वाले हो गए, सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे को यहां बचना किससे है? हमें इन सांपों से बचना है, क्योंकि अगर ये सांप नहीं होते तो हम बड़े आराम से ये सीढ़ियां चढ़ के पार करके होते। सीढ़ियां हम चढ़ना जानते हैं, बाप का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन जो सांप आते हैं तो सबसे पहली महसूसता है अपनी कमजोरी की महसूसता। जैसे ही सांप ने डसा मुझे रियलाइज होना चाहिए कि सांप ने क्यों डसा, इस कमजोरी को मुझे दूर कैसे भगाना है। तो एक तो वो सांप हो गए जो हमारी कमजोरी वाले हैं, दूसरे एक और सांप है जो हमारी कमजोरी नहीं है लेकिन हिसाब किताब चुकतू करने वाले बने हुए हैं। कभी कोई टांग खींचेगा, आपकी स्थिति नीचे लाएगा, कभी कोई कुछ करेगा। जैसे ही आप ऊपर चढ़ना जाएंगे बहुतों को लगेगा ये आगे क्यों निकल रहा है। बाबा ने बोला है आगे बढ़ाना मतलब खुद आगे बढ़ना है, लेकिन हम कई बार पुराने जो हमारे संस्कार है हम क्या करते हैं, दूसरा आगे जा रहा है तो हमें यही लगता है कि उसको नीचे खींचेंगे तो हम उससे आगे हो जाएंगे। तो एक तो अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरा जो भी परिस्थिति या व्यक्ति उसके निमित्त बन रहा है उनमें हमें क्या क्या देखना है, उनकी किस किस चीज की महसूसता करनी है। एक तो ये कि जैसे किसी भी परिस्थिति या किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो हमें जानना चाहिए कि उसके मन में क्या है, वो जो कहना चाह रहा है एक्चुअली उसका मन क्या है, वो जो एक्ट कर रहा है क्यों कर रहा है, उसके भावों को जानना है ना, कि उसकी उस चीज के पीछे उसकी भावना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किसी कमजोरी को दूर करने के लिए ही वो कर रहा हूं और मैं उस चीज का बुरा मान के सोचूं मेरी स्थिति नीचे गिर रही है। तो एक तो व्यक्ति के मन में क्या है, दूसरा उसकी भावना क्या है, तीसरा फिर उनके अंदर की कमजोरी की भी महसूसता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं कहीं उनकी कमजोरी के वश तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि अगर वो अपनी कमजोरी के बस कर रहे हैं तो मेरा जो एक्शन है वो डिफरेंट होगा, अगर उनके मन में भावना मुझे आगे बढ़ाने की है तो मेरा एक्शन डिफरेंट होगा। चौथा कि उनकी परवश स्थिति की महसूसता, वही उसी के लिए हमारे को इसी शक्ति को डेवलप करना है। क्योंकि हम चाहे तो महसूसता की शक्ति से बड़ी बड़ी अनुभूतियां हो सकती है, अभी हम आएंगे उस पर आगे, बहुत सारी अनुभूतियां हैं। जब हम उन अनुभूतियों को करते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि सामने वाला जो व्यक्ति या परिस्थिति है वो किस लिए हमारे पास आया है। और उसमें जैसे बताया था दादी से एक बार ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि कैसे पता चले कि हिसाब किताब बन रहा है या चुकतू हो रहा है ना, तो दादी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था, अगर आपको हल्का फील हो तो समझ लो कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और अगर भारीपन फील हो तो समझ लो कि नया हिसाब किताब मैंने बना लिया। तो उसी तरह ये है, अगर कोई हमें कुछ सलाह देता है और हमें अगर उसके मन में भावना अच्छी है, उसके वाइब्रेशन अच्छे हैं, उसकी वृत्ति बहुत अच्छी है, तो हमें ये फील कभी नहीं होगा कि ये हमारे बुरे के लिए कर रहा है या हमें नीचे खींचने के लिए कर रहा है। हमें ऑटोमेटिकली ये महसूस हो जाएगा कि वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। यही शक्ति हमारे को डेवलप करनी है इस पूरे की। तो उसमें अपनी कमजोरी की भी महसूसता करनी है ना कि मेरे अंदर कमजोरी है ना, वो तो मेरा संस्कार है, उसकी भी महसूस। सबसे पहले महसूसता तो अपनी कमजोरी की चाहिए ना, उसके बाद दूसरा आता है। अपना वजन कम करना है, सीढ़ी नहीं टूटे। ज्यादा बोझ लेके चढ़ेंगे तो सीढ़ी टूट जाएगी। सांप को पार करना है, ज्यादा उनमें लगना नहीं है, नहीं तो फिर उसको मारते में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सांप इज पार्ट गेम ऑफ द गेम, तो हमें उनको पार करना है। वही ना कि अगर केवल हम फेट के सारे चलेंगे तो पक्का सांप पर फेट कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। पुराने
तो
अब वहाँ कुछ नहीं करते, वहां से तो आपको फिर नीचे आना ही है। अब लाइक ये सांप ने 23 परम पहुंच गए, सांप आ गया तो सांप तो हमें डसे गई। जैसे हमने जीवन शुरू किया और हम सब जाते ही हमने आसुरी बंधन में बंध गए, हमें मालूम है कि आसुरी बंधन मुझे नीचे ही ले जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, आसुरी बंधन में होने, किसी ने जाके शादी कर ली, कुछ कर लिया, जो जिन्हें बंधन बोलते हैं आसुरी, तो स्थिति को वो नीचे लेके ही आने वाला है, मुझे वापस कहीं ना कहीं नीचे पहुंचा देगा। एक्चुअली ये 5 नंबर पे ही पहुंचा देगा, फर्स्ट लाइन में ही पहुंच जाते हैं। ये स्टार्टिंग के जो बंधन है ना वो थोड़ा जल्दी नीचे लाते हैं, फिर मुझे वापस पूरा पुरुषार्थ करना है, फिर से सीढ़ी चढ़ना है। पहली सीढ़ी जैसे ही हमने 7 दिन का कोर्स किया, 7 दिन है ना, 7 दिन के जो कोर्स है, पहला चैप्टर मैं आत्मा हूँ, फिर निराकार परमात्मा कौन है, परमात्मा का परिचय है, परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्यों को जाना, उनसे योग लगाया, सृष्टि चक्र कल्प वृक्ष का ज्ञान लिया, फिर जीवन का जो लक्ष्य है वो मैंने फिक्स किया, राजयोग का जो आधार है उसको समझा, राजयोग स्टार्ट किया, जैसे ही ध्यान की विधि और मेरा राजयोग लगना शुरू किया। अगर मैंने कोर्स को बहुत अच्छे से किया और उसको बिल्कुल ही जैसे बोलते ना अच्छे से महसूस करके एकदम से मैंने चालू किया, तो सीधे सीढ़ी मेरे को इतने सारे नंबर्स के लिए बाबा का एकदम हाथ मिला। नए में बाबा बहुत हाथ पकड़ाता है ना, बहुत हाथ पकड़ के चलता है, और नया बच्चा है जल्दी जल्दी सीढ़ी पकड़ाता है, तो मैं बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ी, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे चलता रहा, और ये दुनिया को भी बैलेंस करना है, ये भी करना है, पता चला मैंने एक आसुरी बंधन बांध दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया कि मैंने कोर्स तो बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा निश्चय होने में टाइम लगा। यहाँ पर मैंने सीढ़ी नहीं पकड़ी, थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि मैंने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों विषयों पर पूरा पूरा ध्यान दिया, एकदम नियमित मुटली और सब कुछ फर्स्ट क्लास किया। तो मुझे बाबा ने एकदम फटाक से बड़ी सी सीढ़ी दी, 13 से लेकर सीधा 76 पर पहुंचा था। जो मतलब बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी जो लास्ट और फास्ट वाली जो आत्मा है ना, बाबा ने बोला वो सीधे उन्होंने इतने सारे सांपों को सीधा पार कर लिया। लेकिन फिर भी वही है, ऐसा नहीं है 13 से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद सांप नहीं है, सांप तो उसके बाद भी है। 76
से मतलब
सब कुछ 13 कर दिया, सब कुछ बाबा का कर दिया, मैं भी 13। सांप तो उसके बाद भी है, सांप तो आपको बिल्कुल आखिरी तक 107 पर भी सांप बैठा हुआ है। 16 कलश संपूर्ण हुए हैं यहाँ, अपने आप को सुना। 17 पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन शैली का अनुसरण हम कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग की जो सीढ़ियां हैं ना, सब बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। 17 से सीधा 60 पर पहुंचा दिया, 60 पर पहुंचा दिया। इसके बाद हमारी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि ये फर्स्ट दो लाइन में हम कोई ज्यादा विकारों में मतलब कुछ ऐसा गलत काम करते ही नहीं, क्योंकि नए नए बच्चे हैं ना, तो हमें बड़ा उमंग उत्साह बहुत कुछ रहता है। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सा चले, बोले नहीं शादी भी कर ली उठा के, ये कुछ और ऐसा कुछ कर लिया, कोई आसुरी बंधन बांध लिया, तो सांप काट के वापस नीचे चले गए। इसीलिए ये गेम दो तरह से है, एक है सिर्फ पासे के सारे खेलना, जो आप कह रहे हो ड्रामा में नूंद है, वो सिर्फ पासे के सारे खेल खेलना हो गया, और दूसरा इसमें अपना विवेक, बुद्धि, अपना कर्म सब कुछ यूज करना है।
नहीं, तो बॉक्स में पहुंच गए, अब क्या करना
है? अब आप नहीं करेंगे, सांप कर रहा है। नहीं, अगर हम 22 से सीधा कर रहे हैं, अब यहीं पर अगर हमने सिर्फ पासे से खेले, 22 के बाद हमारा पहला नंबर आ गया, तो हमें सीधा नीचे जानी है, वो हमारा फेट हमें नीचे लाया पुराने से। हाँ, अब इसमें आपको पासा ऐसा फेंकना है कि एक नंबर ना आए यहाँ पर, पासा हमारे को पास करना है। तो यहाँ पर हमारा भी कर्मा इसमें साथ आ गया, हम चाहे तो इसको जंप कर सकते हैं। जो होता है ना, इसमें 6 बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप उसको घुमा के फेंकते हैं, हाँ उसको बोलते हैं पासा। नहीं नहीं, लूडो लूडो अलग है, ये सांप सीढ़ी है। तो दो तरह की महसूसता की, जैसे ही कोई परिस्थिति मेरे सामने आई, और अगर मैंने उसी क्षण परिस्थिति सामने आती है, तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक तो ये कि मैंने महसूस किया कि मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं किसकी संतान हूं, उस चीज की मैंने महसूसता की, तो जो परिस्थिति है वो मुझे पेपर दिखाई देगी और मैं बड़े आराम से उसको पार कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने उस समय महसूसता नहीं की कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, या और भी कुछ अच्छी महसूसता नहीं की, तो क्या होगा, मैं परिस्थिति का फिर शिकार हो जाता हूं। जो परिस्थिति होती है वो मुझे रियलिटी लगने लगती है कि परिस्थिति नहीं है, वो ऐसा लगता है कि ये सच में हो रहा है, और फिर धीरे धीरे मैं उसका शिकार बन जाता हूं। और अगर महसूस नहीं किया तो क्या होता है, वो हम फिर बोलते हैं ना कि क्या, क्योंकि लिस्ट में जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ज्यादा क्यों क्यों करेंगे तो क्यों में आ जाएंगे। क्यों वाले कहां पहुंच जाते हैं, वो फिर लास्ट लाइन तक तो पहुंचते ही नहीं है ना, फिर वो सीधे त्रेता में रह जाते। बाबा ने बोला क्यों में आने वाले, ज्यादा क्यों क्यों करने वाले क्यों में लगते हैं, और क्यों में आएंगे तो फिर त्रेता में आ जाएंगे। अब महसूसता भी दो तरह की है ना, एक है सच्चे दिल की महसूसता, सांप ने मुझे खाया और मैंने सच्चाई से रियलाइज किया कि मेरी कमी कमजोरी या मेरे संस्कार क्या थे जिनकी वजह से मेरे को ये सांप ने खाया है, और मैंने उसको परिवर्तन किया। और दूसरा है चतुराई की महसूसता, क्या हुआ, नॉलेज तो सबको मिली गई है, बहुत चतुर बन जाते हैं, है ना, किसी भी तरह ब्राह्मण परिवार में मेरे नाम के सामने कुछ अट्टा बट्टा ना लगे, तो क्या करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, बड़ों को खुश करने के लिए किसी ने सलाह दी, तो उस समय नाटक करते हैं कि हाँ हमने महसूस कर लिया, आपकी सलाह मान ली, लेकिन एक्चुअल में उसको जीवन में नहीं लाते हैं। तो दो तरह की महसूसता हो गई, एक सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता। महसूसता दोनों में किया, लेकिन ऐसा देखा होगा ना, कई बार हम करते हैं, कोई जब बड़े सलाह दे रहे होते हैं कुछ काम में, तो हमने हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन उसको हमने अंदर नहीं लिया। दोनों महसूसता में क्या अंतर है? महसूस तो दोनों में किया, दोनों में अंतर क्या है? क्यों? अंदर ही क्या? तो जब अंदर से महसूसता की, उसमें ऐसा क्या हुआ कि हम आगे बढ़ गए? जो दिल से महसूसता की, उसमें आपको बाबा का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त हुआ। जैसे ही आपने महसूस किया कि मुझसे ये ईर्ष्या द्वेष आलस अलबेलापन के कारण मेरी ये स्थिति डाउन हुई है, तो आपने दिल से किया तो दिलाराम को तुरंत पता चलता है। आपके दिल में जो भी है, बाबा को सब कुछ स्पष्ट हमेशा पता होता है, तो बाबा का तुरंत आपको आशीर्वाद मिलता है कि बच्चा जो है वो दिल से महसूस कर रहा है। और अगर चतुराई से महसूस कर रहे हैं तो उसमें शक्ति नहीं होती, उस महसूसता में शक्ति नहीं है जिससे कि आप फिर अपने आप को परिवर्तन करके इस सांप से दोबारा बचा सको। बाद में फिर चढ़ेंगे, फिर वही सांप आपको दोबारा काटने वाला है। तो दो तरह की महसूसता हुई। शक्ति नहीं मिली ना, वही अभी जो कुमारियों की क्लास आने वाली है नेक्स्ट संडे, उसमें बाबा यही बोल रहे हैं, संकल्प तो बच्चे बहुत करते हैं लेकिन उस संकल्प में शक्ति नहीं होती। तो क्या होता है, वो चेहरे पर भी फिर वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो हर चीज के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए महसूसता है, उससे अनुभूति होगी, अनुभूति होगी उससे अनुभवी बन जाएंगे। नहीं, कल डिस्कस कर रहे थे रात को, तो भाई यही चल रहा था। नहीं नहीं, अलग अलग तरह के सांप है। कुछ सांपों को लाइक ये जो सांप है ना, काम क्रोध ये पांच विकारों वाला सांप है, इसकी हमें बहुत अच्छी नॉलेज रहती है ना, इसको हम बड़े आराम से पार कर जाते हैं। इसको पार करते ही हमें लगता है अब तो हमारा रास्ता बड़ा क्लियर हो गया है ना, हम बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ जाएंगे ऊपर। सांप को समझा के निकला नहीं, लेकिन सांप भी बोलेगा कोई बात नहीं।
एक्चुअली तो जहरीला ना होते हुए भी डर,
डर से मुक्ति के लिए तो ज्ञान मिल रहा है।
तो सांप भी यही बोलता है कि भाई साहब कोई बात नहीं, इस बार काट लेता हूँ, अगली बार ध्यान रखना। वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसके पास पहुंचे तो वो नीचे जरूर आए ना। ऐसे बहुत सारे आगे चल के इसमें ऐसे बहुत से सांप मिलेंगे जो बाबा बोलते हैं ना, पहले फूंक देते हैं चूहे की तरह। 68 एक गलती करके बाप से छुपाना और बाप से चतुराई करना। गलती कर ली जो बाप से हमने छुपाई, तो क्या होता है वो गलती फिर कई गुना बढ़ती जाती है। अगर बाप को बता दी तो वो आगे हमारे को सांप से बचाएगा, है ना, शक्ति देगा, लेकिन अगर बाप से छुपाई तो वो यहाँ से फिर पहुंचेंगे, फिर खाने वाला है वो सांप। तो पूरा का पूरा गेम क्या है? परिवर्तन। और परिवर्तन पूरा महसूस करने पर है। जो चतुराई की महसूसता है, उसमें वो शक्ति नहीं है जिससे कि हम परिवर्तन कर सकें, और फिर हम जब दोबारा चलते हैं तो वही सांप हमें हमारे को फिर खाता है, क्योंकि एक सांप ने अगर खाया तो कायदे से हमें वो परिवर्तन हमारा हमेशा के लिए हो जाना चाहिए। एक और तीसरे प्रकार की महसूसता है, कोई काम कर रहे हैं, मन कहता है कि ये ठीक नहीं है, है ना, विवेक कहता है कि यथार्थ नहीं है, ये जो आप कर रहे हो उससे हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ सफलता अल्पकाल की मिले, लेकिन वो एक्चुअली यथार्थ नहीं है, यथार्थ विधि नहीं है, यज्ञ के नियमों के अनुसार नहीं है, ये बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म गेन दिख रहा है लेकिन नहीं है। तो हमारा विवेक हमें बार बार आवाज देता है कि आप जो कर रहे हो वो यथार्थ नहीं है, लेकिन बच्चे क्या है, बहुत नॉलेजफुल हो गए, बहुत चतुर हो गए। तो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को हम कभी कभी महारथी सिद्ध करना चाहते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में हमारा नाम किसी भी तरह नीचा नहीं होना चाहिए, सबके सामने हमारी धाक जमना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने विवेक का खून कर देते हैं, अपना पंप पंप माया का जलवा होता है पंप, वो जमाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये आत्मा बड़ी सेवा, मतलब हम तो अल्पकाल का लेना चाहते हैं, हम बाबा की बजाय दूसरी ब्राह्मण आत्माएं उनके अच्छे बनना चाहते हैं। तो क्या हुआ, हमने विवेक का खून कर दिया। तो ये जो विवेक का खून करते हैं वो भी पाप के खाते में जाता है। ये जो बड़े वाले जो सांप है ना, जो ये जो सांप है 107 नंबर पर है, पढ़ाई को ही छोड़ दिया, बाबा को फारकती दे दी है ना। पूरा मैंने ज्ञान मार्ग में चला, सब कुछ किया, आखिरी तक पहुंच गया, लेकिन आखिरी में जाके किसी बात पे मैंने अलग पार्टी बना ली है ना, पार्टी दूसरी बना ली, बाबा को फारकती दे दी। तो वो जो मैं 106 तक 7 तक पहुंच गया था, सिर्फ एक स्टेप मेरा बचा था, वहां से उतर के मैं सीधा नीचे 14 तक आ। तो क्या हुआ, हमने अपने आप को मारुति सिद्ध करने के लिए या अपने आप को ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़ा दिखाने के लिए अपने विवेक का खून किया। तो जैसे बाबा बोलते हैं आत्मघात महापाप है, ऐसे ही जो विवेक का खून आप करते हैं वो भी एक तरह का आत्मघात है, क्योंकि आपने अपने विवेक का खून किया तो वो भी आपके पाप के खाते में जमा होता है। और बाबा फिर ऐसे बच्चों को देख करके मुस्कुराते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके गीत सुनते हैं, उनके गीत भी बड़े, बाबा बोलते हैं उनके गीत बड़े निराले होते हैं, ठीक है ना, किसको क्या पता चला ना? मैंने देखो सबको बना लिया, मैं निमित्त को भी मैंने बना लिया, चला लिया, बड़े बड़े मैंने भाइयों को चला लिया, और वो एक्चुअली अल्पकाल का उनको नाम मान शान भी मिल जाता उसमें, लेकिन बाबा ये देख करके हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके गीत सुनते है। क्योंकि किसी को पता हो या ना हो, लेकिन बाबा को हर बच्चे का है ना, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के हर पत्ते का बाबा को पूरा पता है, आपके दिल की हर एक धड़कन बाबा के सामने स्पष्ट है। ये बाबा बोलते हैं मुझे दिलों को जानने की क्या जरूरत है ना, मैं आपके अंदर क्या है मैं नहीं जानता, नहीं जानना चाहता, क्योंकि जरूरत नहीं है उसको जानने की, उसके सामने हर चीज आपका पूरा अकाउंट स्पष्ट है, आपके दिल की धड़कन में कब क्या चल रहा है, आप चाहें तो तिथि समय सहित कौन कौन की उपस्थिति में क्या क्या आपने कर्म किए बाबा आपको सब बता सकते हैं, लेकिन बाबा बताते नहीं है इन स्पिरिचुअल। वो बताया ना, एक बार दादी ने बताया था कि बाबा से पूछा आप कैसे देखते हो, तो बोलते बाबा के सामने एक जो स्क्रीन है ना वो आपकी किसी भी एलईडी स्क्रीन से बहुत बेहतर है, किसी भी 4HD 4SD का आपका कैमरा कुछ नहीं लगता उसके आगे, बाबा के आगे आपकी एक एक चीज स्पष्ट है, मतलब आपके दिल की जो धड़कन है ना वो भी एकदम स्पष्ट है बाबा के आगे, इसलिए बाबा को जानने की कुछ जरूरत नहीं है, बाबा जानते हैं अपना अकाउंट बच्चे ने खुद बनाया। तो बाबा ये सब जानते हुए भी अनजान बनते हैं और भोलानाथ बनकर बच्चों को चलाते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है, बाबा जानते हैं तो क्यों नहीं बच्चे को सावधानी दे देते अकेले में, ड्रामा में है, पर बाबा चाहे तो बच्चे को अकेले में सावधानी दे सकते हैं ना। एक्चुअली बच्चे अपना बनाते रहते हैं, बाबा सावधानी भी देते हैं, लेकिन अगर किसी एक बच्चे को सावधानी देंगे तो बाबा के ऊपर भी चार्ज लग जाएगा है ना, पार्शियल होने का। तो बाबा सावधानी जरूर देता है और सबको एक साथ देता है, जिन्होंने वो कर्म किया है या जिन्होंने नहीं किया है या जो करने वाले आगे, तो बाबा की मुरली में वो सावधानी हमेशा आ जाती है, बाबा सब बच्चों को एक साथ देते हैं, इसलिए इंडिविजुअल नहीं देते हैं। जब जानते हैं फिर भी भोला क्यों बन जाते हैं, चाहे तो दंड भी दे सकते ना उसी टाइम, तो भोला क्यों बन जाते हैं, बाबा का कौन सा गुण इसमें काम आता है, रहम दिल है, क्योंकि बाबा बहुत रहम दिल है। कैसे पता चलता है बाबा रहम दिल है? अच्छा, बाबा की जो रहम करने की जो तरीका है और हमारा जो रहम करने का तरीका है उसमें अंतर है कुछ? बाबा के रहम दिली का एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत पहले जब साकार बाबा थे, मैंने सुना है किसी से, एक युगल थे ज्ञान में चलते थे, तो उनका एक ही बच्चा था, तो ज्ञान में तो चलते थे ठीक ठाक सब कुछ धारणा वगैरह, लेकिन मोह भी बहुत था बच्चे से है ना, वो भी था लोगों का कि खानदान भी चलाना है ये सब, वो बच्चा भी बड़ा हो गया, वो भी आयाराम गयाराम की तरह मतलब सेंटर में आता, सेवाओं में सहयोग देता, सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो शादी करना थी उसको। अब वो युगल को बड़ा वो था कि बाबा से कैसे पूछे, बाबा तो शादी के लिए छुट्टी देंगे नहीं, पर अभी जो हुआ सब कुछ तय हो गया, तो कार्ड छप गए तब लेके बाबा के पास आए। बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे ये है, संक्षेप में ही सुना रहा हूँ, ऐसे ऐसे शादी करनी है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा क्या करेंगे बताओ? बाबा को पता है बच्चा बेकार में जा रहा है, रहम दिल है बाबा, क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा ठीक है भल करो, चलेगा। अब आप वहां बैठे हुए हो, ठीक है, आप बाबा के पास बैठे हुए हो। अब बाबा से आपने पूछा कि बाबा आपने क्यों छुट्टी दी उसको, है ना? आप कहते तो हो सकता है वो शादी नहीं करता, हो सकता है मान जाओ। अब आपने कह दी तो वो तो सबको ये कहेगा कि मेरे को तो बाबा ने हाँ कर दी, अब मैं तो करूंगा शादी, अब क्या है? बाबा ने मुझे ना किया ही नहीं है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? वो बाबा की रहम दिली यहाँ आती है। बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे मालूम है ये शादी करने वाला है, बाबा को पता है ये शादी करने वाला है, कार्ड भी छप चुका है। शादी करके जो विक्रम बनेगा उसका बोझ तो इस आत्मा पे चढ़ेगा ही, हो सकता है उस बोझ को ये आत्मा योग से ठीक भी कर ले। लेकिन अगर बाबा ने कहा शादी नहीं करो और फिर भी इस आत्मा ने अगर शादी की, तो भगवान की अवज्ञा का जो बोझ चढ़ेगा वो ये आत्मा कभी नहीं उतार पाएगी। तो बाबा की रहम दिली की पराकाष्ठा देखो आप, कि वो कितना सोच कर कि इसके ऊपर भगवान की अवज्ञा का बोझ ना चढ़ जाए। इसलिए बाबा ने उससे कहा, उसे मालूम है शादी तो करनी है ना, कार्ड छप ही चुका है, सब कुछ मानने वाला है नहीं, तो उसके ऊपर अवज्ञा का बोझ नहीं चढ़े। और हमसे क्या होता है, हमसे किसी ने कुछ सलाह मांगी, हमने सलाह दी, अगर उस आत्मा ने सलाह नहीं मांगी तो हम क्या कहते हैं, मैंने कहा था, मेरी बात नहीं मानी, देख लिया। तो हम उसको और नेगेटिव एनर्जी, हमारा भाव उस आत्मा के प्रति चेंज हो जाता है, जो पहले भावना शुभ भावना रही होगी वो भी चेंज हो जाती है। बोले ठीक है, मैंने बोला माने ही नहीं, अभी भुगतो परिणाम। तो ये जो बोलना एक हाँ तो ये नेगेटिव एनर्जी हम उसको आत्मा को दे देते हैं। नहीं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शिवानी बहन ने क्लास में दिया था कि जैसे घर में एक बच्चा है ना, वो ऊपर से जंप मारने की बोल रहा है, तो आपका फर्ज है उसे समझाए। आप उसे समझाएंगे कि नहीं जंप करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन वो नहीं मान रहा, वो बोलेगा मैं जंप करूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप क्या करोगे? अब आपको क्या करना है, अब ये आपकी रहम दिली हो जाती, आपकी शुभ भावना बच्चे के लिए चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आपको बोलना है अभी ये डिसाइड इसने कर ही लिया है, बिल्कुल नहीं मानने वाला है, जंप इसे करना ही है, तो आपको बोलना है कि ठीक है आप जंप करो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस जंप में सफल होने वाले हो, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे पूरी तरह विश्वास, और उसको उसको मन से उसी भावना से शुभकामनाएं। आपने समझा लिया नहीं मान रहा ना, आप कर रहा है तो आप उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे। मैंने पहले ही बोला था मैं बोल रहा हूँ नहीं मानोगे तो ये होगा, मैंने उसको पहले से ही बोल दिया ना कि तुम सफल होने वाले हो ही नहीं, तो वो नहीं करना है। अब आपने डिसाइड कर ही लिया है चाहे भले कुएं में कूदने का भी, तो मेरी तरफ से पूरी शुभ भावना है कि आप कूदोगे भी तो भी आप कुछ अच्छा करने वाले हो उसमें। तो तो स्वयं परिवर्तन तीव्र गति से ना होने का कारण क्या था? महसूसता की शक्ति की कमी। तो महसूसता की शक्ति को हम जितना डेवलप करेंगे उतना हम फिर उन सांपों से, एक बार उस सांप से अगर हमने डस गए और महसूस कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, तो दोबारा से फिर हम उस सांप को नहीं डसेंगे। तो बाबा के साथ बैठे थे तो मैंने बाबा से पूछा, जब गेम देख रहे थे, मैंने कहा बाबा आप पे कोई काम नहीं, यही करते रहते हो, ठीक देखते रहते हो? तो बाबा बड़े मुस्कुरा के जवाब देते हैं, क्या करूं, साथ तो ले जाना ही है ना बच्चों को। शिव की बारात तुमने सुनी है? शिव की बारात का गायन है, उसमें ना सब तरह के हैं, लूड़े लंगड़े और लूड़े लंगड़े कौन है जो बार बार इन सांपों से खाए गए, गिरे, हाथ पैर तोड़ दिए, फिर थोड़ा बहुत ठीक हुआ थोड़ा नहीं हुआ, दूल्हे लंगड़े चल रहे। लेकिन बाबा बोलता है मेरी भी शान है, मेरी जो बारात चलेगी उसमें दो तरह के लोग हैं, एक हैं साथी दूसरे हैं बाराती। तो यहाँ हम सब जितने बैठे हैं वो सब कौन है? साथी है या बराती है? हमें साथी बनना है। तो साथी आपने देखा होगा, जैसे जब दुल्हन भी वरमाला के लिए जाती है लौकिक में, तो दुल्हन के साथ दो चलती हैं, एक इधर एक उधर, तो कौन सी छाटी जाती है? जो बिल्कुल सबसे ज्यादा सजी समरी हो, जो थोड़ी सी दुल्हन के समान लग रही हो। तो ऐसे ही बाबा बोलता है, बाबा की भी शान है, बाबा के साथ में जो चलेंगे साथी, वो सब बाप समान दिखने चाहिए। लंगड़े लूलों को साथ में नहीं ले सकते, वो लंगड़े लूले सब पीछे बराती बन के आएंगे, क्योंकि ड्रामा के अनुसार, बाबा बोलते हैं ड्रामा अनुसार कुछ कमजोर आत्माएं भी धर्मपुरी में पास जरूर होंगी, वो सब लंगड़ी लूली आत्माएं जो है वो बराती हैं, लेकिन आप सब कौन है? साथी। साथी मतलब बाप समान संपूर्ण। तो महसूसता की शक्ति से बहुत अनूठे अनुभव करने हैं, है ना? महसूसता की शक्ति को डेवलप करना है, बाबा का प्यार अनुभव करना है कि बाबा हमें कितना प्यार करता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ आत्मा हमेशा अनुभव करना है। कभी बाबा का राइट हैंड बन सकते हैं हम, है ना? साकार ब्रह्मा की राइट हैंड भुजा बन के अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे ये अनुभव हम करते जाते हैं ना, महसूस करते जाते हैं, तो हमारी पावर जो है वो बढ़ती जाती है, फिर हमें इन सांपों को जंप मार के पार करने का हुनर आता जाता है। रात में इसका एक्चुअली एक बड़ा वन एक एक स्क्वायर जो है 1 फीट बाई 1 फीट का फ्लेक्स बनेगा ना, उस पर फिर चल सकते हैं उस पर साथ में। और उसमें अगर कुछ करना है तो एक्चुअली पासे से खेलेंगे तो सिर्फ फेट काम करेगा। अगर उसमें कर्म को लाना है तो आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं। फिर उसके बाद पासे से कोई भी नंबर आए, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उस पर चलना है या नहीं चलना। अगर मुझे डाउट है कि वो नंबर मुझे सांप तक ले जा सकता है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, तो उसमें हमारा कर्म ऐड हो जाएगा। अदरवाइज तो केवल पासे के आधार पर फेट काम करेगा ना, आपका कर्म पुरुषार्थ उसमें नहीं काम आता। तो एक मेडिटेशन में ज्यादा नहीं, पर एक महसूस करते हैं आज कुछ ना, कोई है जिसको बाबा का प्यार नहीं महसूस होता हो? बिल्कुल ईमानदारी से महसूसता की शक्ति को यूज करें, वो बताएं ऐसा कौन है जिसे बाबा का प्यार बहुत कम महसूस होता है, जिसे लगता है कि नहीं, मतलब मुझे वो फीलिंग नहीं है बाबा के। मुझे इस चैप्टर को करने से पहले बहुत ज्यादा फील नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जो किया ना एक एक्सपेरिमेंट, उससे समझ में आया कि बाबा हमें कितना प्यार करता है। महसूस करना है बाबा प्यार करता है। 5 मिनट करते हैं, 5-10 मिनट, है ना? ये दो पार्ट में है ये कमेंट्री। पहला पार्ट हम आंख खोल के करेंगे, दूसरा आंख बंद करके। तो एक लौकिक सीन है ना, एक डॉक्यूमेंट्री सामने लाते हैं जो फर्स्ट पार्ट है कि एक लौकिक माँ बाप है ना, उनका एक ही बच्चा है, बड़ी मन्नतों के बाद बच्चा हुआ है, तो कैसा होगा उनकी आंखों का नूर बिल्कुल, है ना? पूरे टाइम वही बच्चा बच्चा उनकी जिंदगी है, माँ का विशेष बहुत प्यार रहता है बच्चे पर। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगता है, पढ़ाई में निकल गया। एक दिन आया कि बच्चे को विदेश जाना है एक कोर्स के लिए, ना? 2 साल का एक कोर्स है, वो करने के लिए बच्चा विदेश जा रहा है। तो सोचो माँ की हालत क्या होगी, है ना? वो तो पूरे टाइम उसको तो मन ही कर रहा है कि बस बच्चे को मैं छाती से लगाए रहूं पूरे टाइम। खैर बच्चा गया, विदेश चला गया, अब रोज फोन कर रहे हैं, कैसा है, सुबह शाम फोन चल रहा है। पूरे 2 साल बच्चे के ऐसे ही कट गए, माँ बाप बिल्कुल राह जुड़ रहे हैं। बच्चे के वापस आने का टाइम है, आने का टाइम है, तो माँ को सब पता है कि उसको क्या अच्छा लगता है ना, वो सारे पकवान बना रही है, एक महीने पहले से उसने तैयारी करना शुरू कर दी, उसका प्यार है। उस बच्चे से इस माँ का रिश्ता कितने दिन का है? 20 साल का बच्चा है तो 20 साल का रिश्ता है, एक जन्म का रिश्ता है, विनाशी रिश्ता है, विनाशी रिश्ता एक जन्म का और सिर्फ 20 साल का। उसके अंदर कितना प्यार है ना, कि बच्चा लौट के आ रहा है तो माँ बिल्कुल पलकें बिछाए इंतजार कर रही है, जैसे एयरपोर्ट पे मिली सीने से लगाया, बच्चा आया खाया पिया थोड़ी देर में बोल रहा है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, उसे उतना प्यार नहीं है, पर माँ का प्यार देखो, माँ बाप का प्यार देखो। वो खेलने गया तब भी वो फिर आराम से उसका वेट कर रही है कि अभी लौट के आएगा, फिर मेरे साथ बैठ के खाएगा, मेरे साथ बातें करेगा विदेश की, ठीक है? विनाशी संबंध, एक जन्म का सिर्फ 20 साल का। अब आंख बंद करते हैं, अब आंख बंद करके महसूस करें। ऐसे ही एक बच्चा 5000 साल पहले बाबा ने विदा किया था। इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए सारे गुण शक्तियों से सजाकर बाबा ने हमको वहां से विदा किया। सृष्टि रंगमंच पर मैं खेल खेलने लगा। सत्युग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया। धीरे धीरे खेल खेल में मुझे चोटें लगने लगी, दुख महसूस होने लगा। एक एक दुख मुझ आत्मा के ऊपर एक एक कांटा बनकर चुभने लगा। कलयुग आते आते एकदम लू लिहान, सब जगह दुख के कांटे लगे हुए। हर दुख में बाप को पुकारा लेकिन बाप का पता भूल गया। बाप जिस तरह से मेरी मदद कर सकते थे भक्ति मार्ग के हिसाब से की। फिर एक दिन संगम आ गया। मुझे बाप की पहचान, बाप का पता मिल गया। अपने श्रेष्ठ स्वरूप को महसूस किया कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है। जैसे ही अपने निज स्वरूप में स्थित हुआ तो देखा बाबा बाहें पसारे अपलक बड़े प्यार से मुझे बुला रहे। जन्म जन्म का अनादि संबंध 5000 साल से बिछड़ा हुआ, उस विनाशी संबंध को याद करें। सिर्फ 20 साल का विनाशी एक जन्म का संबंध, कितना प्यार था उसमें। तो ये तो अनादि अविनाशी जन्म जन्म का संबंध, पूरी तरह निस्वार्थ संबंध। तो बाबा की आंखों में मेरे लिए कितना प्यार है। मैं जाता हूं बाबा की गोदी में चढ़ जाता हूं। बहुत सारे घाव लगे हुए हैं, बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं। बाबा धीरे धीरे करके एक एक कांटा निकालते जा रहे हैं। मेरे सारे दुख दूर होते जा रहे हैं, सारा दर्द गायब होता जा रहा है। बाबा की गोदी में बिल्कुल बेफिक्री की नींद सो गया। लेकिन जैसे ही नींद से जागा कोई दर्द नहीं, फिर से गोदी से उतर के वापस मिट्टी में खेलने लगे। फिर से गंदा हुआ, फिर कांटे चुभे, फिर बाबा याद आया। बाबा उसी तरह प्यार से मेरा इंतजार करता है। फिर से बाबा के पास गया, बाबा ने वही कांटे निकाले, फिर से मुझे सजाया, मेरा श्रृंगार किया। अब मैं आत्मा प्रण करती हूं दोबारा से वापस मिट्टी में खेलने नहीं जाऊं। बाबा के प्यार को फील कर।